नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और दिन भर की तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल पत्रकार अजय मसंत। अजय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार सिद्धार्थ जी।
सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में आज भारतीय जूनियर हॉकी टीम और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 3-3 गोल से डरा रहा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 198 रन बनाकर 301 रन की बढ़त बनाई। ब्रिटेन के कैटी बॉल्टर ने पैन पैसिफिक ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मैच में बॉल्टर का सामना अमरीका की सोफिया केनिन से। और पहली खो खो विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में 13 से 19 जनवरी के बीच दुनिया भर के 24 देश टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। मलेशिया के में जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में आज भारतीय जूनियर हॉकी टीम और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 3-3 गोल से ड्रॉ रहा। सबसे पहले सुनते हैं अतर की ये रिपोर्ट।
मलेशिया के जोहर बहारू में आज टीम इंडिया ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। भारत ने दमदार शुरुआत की और छठे ही मिनट में गुरजोत ने गोल किया। 2 मिनट बाद भारत को लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन गोल नहीं हो सका। इस बीच न्यूजीलैंड ने पलटवार किया, लेकिन भारतीय डिफेंस ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। न्यूजीलैंड के लिए पहला गोल 17वें मिनट में एलमेस ने किया। भारत ने इसी मिनट में रोहित के गोल के दम पर फिर बढ़त बना ली। भारत ने दूसरे क्वार्टर में कई पेनल्टी कॉर्नर बनाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। न्यूजीलैंड के लिए तीसरे क्वार्टर में एलमेस ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। उन्होंने ही 45वें मिनट में एक और गोल करके न्यूजीलैंड की बढ़त 3-2 की कर दी। भारत ने 46वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करने का मौका गंवा दिया, लेकिन तलेम प्रियाबेत ने 60वें मिनट में भारत के लिए गोल कर 3-3 की बराबरी कर ली और मैच ड्रॉ रहा। न्यूजीलैंड की ओर से ड्रैग फ्लिकर जॉन्टी एलमेस ने हैट्रिक लगाई। भारत 10 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फाइनल में पहुंचने का फैसला ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के जापान और मलेशिया के खिलाफ होने वाले मैचों के आधार पर होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
जी हां अजय, जैसा कि सर फिरोजी की इस रिपोर्ट में हमने सुना, और आज मुकाबला जो है काफी, जैसे कह सकते हैं कि
टक्कर का रहा
और टीम इंडिया ने हालांकि अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैच बराबरी पर होने की वजह से।
जी हाँ बिल्कुल, आज फाइनल में जगह बनाने की बहुत ही ज़रूरत थी और बना लेना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था हमारे इंडियन जूनियर्स ने। अंडर 21 की टीम होती है, सुल्तान जौहर में खेलने जाती है जो इंडिया की टीम, तो डेफिनेटली चांस था, लेकिन काफ़ी सारे उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर्स मिस की, उसी की वजह से जो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी चूक हो गई। लेकिन अब जो है इनको देखना है कि अभी जो 2 और मैचेस होने, ऑस्ट्रेलिया का मैच ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, ग्रेट ब्रिटेन खेल रहा है, जापान और मलेशिया के साथ इनके मैचेस होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि इंडिया फाइनल में जा पाता है कि नहीं जा पाता। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, इंडिया हैज़ कम दिस फार, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीती। आज का मैच ज़रा ड्रॉ हो गया, वो अलग बात है, लेकिन सुल्तान जौहर कप जो 2011 में शुरू हुआ था, वहां से जो है इंडिया का परफॉर्मेंस एक देखी तो कंसिस्टेंट रहा है हमेशा इस टूर्नामेंट में। ये प्रीमियम टूर्नामेंट है हॉकी का फॉर जूनियर्स, और मलेशिया में खेला जाता है। इसमें इंडिया जो है जॉइंट हाईएस्ट टाइटल होल्डर है विद ग्रेट ब्रिटेन, दोनों ने 3-3 बार टाइटल जीती है। उसके अलावा ये 2022 में ऑस्ट्रेलिया को हरा के इन्होंने पिछली बार खिताब जीता था, और 2023 में जो है ये तीसरे स्थान पे फिनिश करेंगे। तो हम तो एक हिंदुस्तानी होके, एक जो हॉकी के लवर होके, यही एस्पायर करेंगे कि इंडिया जो है दोबारा से उस ट्रॉफी को रिगेन कर ले और ये चौथी बार टाइटल जीते, ताकि वो सबसे हाईएस्ट पहुंच जाए, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल्स जीते।
तो अजय, जो भारत की हम शुरुआत अगर हम देखें, तो पहले 3 तो लगातार हमने बैक टू बैक मैच जीते, जापान के साथ मैच के साथ पहली बार शुरुआत हुई, हमने ग्रेट ब्रिटेन को हराया, आया। तो जिस तरीके से ये पूरा मैच चला है तो भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अभी भी अगर हम देखें तो अंक तालिका में सबसे ज्यादा अंक भारत के हैं।
जी हाँ है, लेकिन न्यूजीलैंड की एक जो टीम है ना, एक बहुत ही डिफिकल्ट कस्टमर की तरह। आप जब भी देखिए, दो टीमें जो है हिंदुस्तान को, जो हमेशा चाहे वो सीनियर लेवल पे हो चाहे वो जूनियर लेवल पे हो, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो तंग करती हैं, जो परेशान करती हैं, एक तो मलेशिया है। एशियन गेम से कितनी बार इंडिया को मलेशिया ने जो है फाइनल में पहुंचने से रोक दिया है। न्यूजीलैंड जो जितने और भी काफ़ी सारे जैसे सीरीज होती हैं उनकी, और भी जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं यहाँ वहाँ, वहाँ पर भी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है सीनियर टीम को। जूनियर का तो खैर ये सुल्तान और जौहर टूर्नामेंट है, इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक मेंटल ब्लॉक भी रहता है इंडिया का जब ये खेलती है इधर मलेशिया के साथ या न्यूजीलैंड के साथ। और मुझे यहाँ यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं वही चीज़ आगे आ गई और इंडिया को उन्होंने जो है वो मेंटल ब्लॉक ने इनको रोका आगे बढ़ने से और पूरे अंक अर्जित करने से। हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट एंड सी कि क्या होता है, लेकिन मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इंडिया इस बार फाइनल में ज़रूर पहुँचेगा और टाइटल ज़रूर जीतेगा।
बिल्कुल, तो यही उम्मीद है कि जोहर कप में हमारे खिलाड़ी अपना दमखम इस खेल में दिखाते रहेंगे। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 198 रन बनाकर 301 रन की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड के पहली पारी में 259 रन के जवाब में भारत की पहली पारी 156 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिशेल सिम्पसन ने सबसे अधिक 7 विकेट लिए। क्या कुछ रहा आज मैच के दूसरे दिन, बता रही हैं वैष्णवी।
दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट गंवाकर 198 रन बना लिए हैं और टीम मजबूत स्थिति में है। कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 259 रन बनाए थे और जवाब में टीम इंडिया को 156 रन पर समेट दिया था। ऐसे में दूसरी पारी में न्यूजीलैंड टीम की कुल बढ़त 301 रन की हो चुकी है। अब भी 3 दिन का खेल बाकी है और ऐसे में नतीजा आना तय है। जिस तरह से गेंद स्पिन हो रही है, चौथी पारी में 300 से ऊपर किसी भी लक्ष्य का पीछा करना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। दिन का खेल खत्म होने तक ग्लेन फिलिप्स 9 रन और टॉम ब्लंडल 30 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले भारत ने आज 1 विकेट पर 16 रन से आगे खेलना शुरू किया और 140 रन बनाने में बाकी 9 विकेट गंवा दिए। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने 30-30, रविंद्र जडेजा ने 38 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 103 रन के बढ़त के साथ बैटिंग करने उतरी और टीम एक बार फिर 200 रन के करीब है। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के लिए कप्तान टॉम लैथम ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए और रवि अश्विन ने आउट किया। भारत की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। देखना दिलचस्प होगा कि मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया किस तरह न्यूजीलैंड को रोकती है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
और आज टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल ने कहा कि उन्हें सेकेंड इनिंग में टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।
I think they bowled very well in partnership. Watching from the outside, it was very hard for us to rotate strike to keep the scoreboard ticking. I think in these sort of conditions where the ball is turning and you know asking better questions, it is important to do that. I thought the pace that Santana bowled today, a particular spot on for this surface. Day two, you know, arriving here this morning, being one down, you know, our camper was very confident that we were you know going to bat big, but unfortunately just couldn't get that momentum going. I think you know you want to be playing cricket on the front foot in conditions like that. You know, for us to try and get onto the front foot by one looking to score, looking to be aggressive, we just couldn't find that rhythm and that momentum today with the bat.
जी हाँ, जैसा कि कैच जो कोच ने भी कहा, दूसरा दिन भी न्यूजीलैंड के नाम रहा। न्यूजीलैंड के पास अब 301 रन की बढ़त हो गई है। अभी फिलहाल हम बैकफुट पर हैं, क्या कुछ कहेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल बैकफुट पर हैं। 301 रन की बढ़त बहुत ज्यादा होती है और इंडिया का जो चेज का जो रिकॉर्ड है वो 387 है. इसके आगे इन्होंने अपने कंट्री में 387 से ज्यादा चेज नहीं किया है फॉर अ विक्ट्री. दैट वाज इन 2008 अगेंस्ट इंग्लैंड. तो डेफिनेटली 301 का टारगेट बहुत बड़ा है और अभी न्यूजीलैंड के पास 5 विकेट और बाकी हैं. कल हो सकता है वो 50 रन भी ऐड कर सके, हो सकता है 100 रन भी ऐड कर सके. अगर 400 रन का टारगेट दे देती है इंडिया को तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया. डेफिनेटली आज जो मिचेल सैंटनर ने जो परफॉर्मेंस दिया, 7 विकेट लिए, उनका करियर बेस्ट बोलिंग फिगर्स रहे, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो उसी से ही जो है पूरा खेल ही पलट गया. जिस तरह जैसे वॉशिंगटन सुंदर ने पहले इनिंग्स में 7 विकेट जीते थे और बहुत ज्यादा इंडिया में एक इंथुजियाज्म आ गया था कि ये टेस्ट तो इंडिया जीत जाएगा, बराबरी पे ले आएगा, वही कर्तव्य जो है मिचेल सैंटनर ने दिखा दिया अपनी जब उन्होंने बॉलिंग करी इंडिया को और पूरा गेम टिल्ट कर दिया है. लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि एप्लीकेशन का थोड़ा सा इंडिया जो है कमी पाई गई. विराट कोहली जिस हिसाब से फुल टॉस खेलते हुए, सिंपल फुल टॉस खेलते हुए आउट हुए, जिस हिसाब से जो है सरफराज खान आउट हुए और बाकी जितने भी और बैटर्स थे, रोहित शर्मा आउट हुए, उससे ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया में अपने क्या वो स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं क्या आजकल, जो कि इंडिया जाना जाता है टू प्ले स्पिन.
बिल्कुल. तो ये बैक टू बैक दूसरे टेस्ट मैच में भी अभी फिलहाल जो है भारत की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अब कल के दिन पता चलेगा कि क्या कुछ इस मैच में होता है. ब्रिटेन के केटी बॉल्टन ने पैन पैसिफिक ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. सेमीफाइनल मैच में उनका सामना अमेरिका की सोफिया केनिन से होगा. सुनते हैं अथर सईद की ये रिपोर्ट.
28 वर्षीय ब्रिटिश टेनिस स्टार केटी बॉल्टन ने WTA टूर के एशियाई दौरे पर बाउंस बैक करते हुए पैन पैसिफिक ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने पूर्व US ओपन चैंपियन बियांका एंड्रीस्कू के खिलाफ 6-2 6-1 से शानदार जीत दर्ज की. हाल के टूर्नामेंटों में शुरुआती दौर में बाहर होने के बाद बॉल्टन ने शानदार कम बैक करते हुए एंड्रीस्कू पर शानदार जीत दर्ज की. सेमीफाइनल में बॉल्टन का सामना अब ग्रैंड स्लैम चैंपियन सोफिया केनिन से होगा. 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता सोफिया ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में 5वीं वरीयता प्राप्त डारिया कसाटकीना को 6-3 6-4 से हराया. इसके अलावा शीर्ष वरीयता प्राप्त पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता झेंग किनवेन 8वीं वरीयता प्राप्त लेला फर्नांडिस से खेलेंगे. इस मैच के विजेता का सामना डायना शराइवर से होगा जिन्हें क्वार्टर फाइनल में वॉक ओवर मिला था. अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन.
जी हाँ, केटी बॉल्टन ने जिस तरह से सेमीफाइनल में जगह बनाई है और अब सोफिया केनिन से मुकाबला.
जी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है. लेट्स सी कि आगे क्या परफॉर्मेंस होता है. अभी तो टेनिस सीजन बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है. उसके बाद जो है अगला जो सीजन स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन से, तो डेफिनेटली ये सब टूर्नामेंट्स चल रहे हैं धीरे धीरे एंड वी आर होपिंग टू एंड अप मतलब इस सीरीज को, टूर्नामेंट्स को एंड होने में जो है एक अच्छा ही परफॉर्मेंस आएगा इन दोनों का.
खो खो विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी के बीच होगा. खो खो विश्व कप में इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स और अमेरिका सहित 24 देश भाग लेंगे. सुनते हैं वैष्णवी की ये रिपोर्ट.
खो खो हमारे देश के इतिहास का हिस्सा रहा है और प्राचीनतम खेलों में शामिल है. भारत सरकार कई स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दे रही है और 2025 में खो खो विश्व कप के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी करना उसी दिशा में एक कदम है. इस विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में होगा. इस प्राचीन भारतीय खेल को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए इस टूर्नामेंट में 24 देश शामिल होंगे जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें विश्व वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी. चैंपियनशिप में प्रत्येक डिवीजन में 16 टीमें शामिल हैं. चैंपियनशिप में अफ्रीका के घाना, कीनिया, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा जैसे देश होंगे, तो वहीं एशिया से भारत, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका नजर आएंगे. यूरोप से इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स और पोलैंड, जबकि उत्तरी अमेरिका से कनाडा और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से ब्राजील और पेरू, आशियाना से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खेलेंगे. ये ऐतिहासिक चैंपियनशिप खो खो के लिए एक बड़ी छलांग है जिसने इसे एक प्रिय स्थानीय खेल से वैश्विक इवेंट में बदल दिया है. वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन.
जी हाँ अजय, खो खो को अब उसका स्थान मिल रहा है और जिस तरह से विश्व कप प्रतियोगिता हो रही है, क्या कहेंगे?
जी हाँ, जिस हिसाब से कबड्डी, जिस हिसाब से खो खो को इंक्लूड कराना चाहते हैं एशियन गेम्स में, तो डेफिनेटली जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। खेलो इंडिया के थ्रू तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको ग्लोबल लेवल पे भी ले जाने की पूरी कोशिश है।
और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। अजय, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
धन्यवाद सिद्धार्थ जी।
इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।